तब तक मेरा खुद का यूट्यूब चैनल नहीं था, मैं सारा टाइम एल्विस के चैनल पे दे रही थी। पापा ने मुझे मोटिवेट किया कि देख दूसरों को टाइम दे रही है, अच्छा कर रही है, सब कर रही है, पर तेरा खुद का क्या। कहीं पे ना ऐसा लग रहा था कि यार खुद का भी तो नाम नहीं हो रहा ना, और वो भी करना है।
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द जोश टॉक्स पॉडकास्ट पर, जहां हम भारत के कोने कोने से आए हुए प्रेरणादायक लोगों की कहानियां सुनेंगे। मैं हूं आपका होस्ट सिद्धांत नाग, और आज हम बात करने जा रहे हैं कीर्ति मेहरा से, जो एक व्लॉगर और एक कंटेंट क्रिएटर हैं। कीर्ति जी, आपका द जोश टॉक्स पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। क्या आप हमें अपने शुरुआती जिंदगी के बारे में कुछ बता सकती हैं? आप कहां से बिलोंग करती हैं और आपने अपनी पढ़ाई कहां की?
मैं अपनी स्टोरी बचपन से चालू करती हूँ। कीर्ति मेहरा नाम की एक लड़की थी जो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा थी, डांस में बहुत ज़्यादा थी, पर डरती थी लड़कों से, क्योंकि बचपन से गर्ल्स स्कूल में पढ़ी थी। फाइनेंशियली काफ़ी इश्यूज हुए थे फैमिली में, मैं और मेरा भाई दोनों प्राइवेट स्कूल में थे, तो उसके बाद फैमिली में ऐसे फाइनेंशियल कुछ क्राइसिस आए, और वो इतने बुरे आए कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमको घर पे नमक से रोटी खानी पड़ती थी। मुझे अपनी मासी के बच्चों के कपड़े पहनने पड़ते थे, मम्मी को मासी के, और मतलब होते हैं ना पास के नेबर्स वगैरह तो बोलते हैं चलो ले लो, तो ऐसे हमको कपड़े पहनने पड़ते थे। और पापा काफ़ी मेहनत करते रहते थे, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पापा का मन जो था वो बिजनेस में था, और कहते हैं ना पापा की किस्मत जो थी वो जॉब में थी। तो पापा बिजनेस करते थे, फिर पापा जॉब करते थे, तो दोनों चीज़ें साथ में चलती रहती थी। पर उन्होंने फाइनेंशियली एक टाइम बाद इतना स्टेबल कर दिया कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, बट उससे पहले का जो ऐसा जर्नी थी वो ऐसी थी कि मेरे भाई को और मुझे प्राइवेट स्कूल से निकल के दोनों को गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ा। तो मैंने सेकेंड क्लास से ट्वेल्थ अपनी उसी स्कूल में करी है, पर मेरे को लगता है कि मेरी मम्मी ने और मेरे पापा ने ट्वेल्थ तक मेरे पे जो स्ट्रिक्टनेस रखी है उसको मैं आज थैंक यू बोलती हूँ, कि अगर उन्होंने वो स्ट्रिक्टनेस मेरे पे नहीं रखी होती। उस टाइम पे बच्चों को लगता है कि यार क्यों रोक रहे हैं हमको, क्या ही गलत कर रहे हैं हम, पर अब जाके पता चलता है कि अगर वो मुझे उस टाइम पे कुछ चीज़ें करने से ना रोकते तो आज की जनरेशन जो स्कूल में चीज़ें करना चालू हो गई है वो मैं तभी कर देती। हर चीज़ का एक एज होता है कि आपको ना इस एज में एक्सपीरियंस करना है, तो मैंने वो एज के साथ चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं। आज के बच्चे मुझे लगता है स्कूल में ही सब कुछ एक्सपीरियंस करके अपनी आगे की लाइफ सोचते हैं कि अब क्या करना है, अब तो पता ही नहीं है। उसके बाद मैं कॉलेज में आई, कॉलेज में मेरे को हंसराज कॉलेज में एडमिशन मिला था। फिर हमारा एक ग्रुप बना जो मेरे डिपार्टमेंट का था, मैं उनके साथ बहुत हैंग आउट करती थी, बहुत अच्छा चल रहा था। फिर हमारी दोस्ती हुई एक दूसरे डिपार्टमेंट के ग्रुप से जिसमें एल्विश भी था, तो वहाँ पे हम सब लोग ग्रुप में बैठे होते थे कॉलेज में। अगर हंसराज कॉलेज के बारे में किसी को पता हो तो LP बोलते हैं, लवर्स पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे ऐसा कहते हैं कि शाहरुख खान ने गौरी खान को प्रपोज किया था। तो हम लोग वहाँ पे सारे बैठे रहते थे, तो वहाँ पे वीडियोस चल रही थी ऐसे आशीष चंचलानी की, हर्ष बेनीवाल की, और हम लोग ना देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यार ये हम भी तो कर सकते हैं, इतना तो कुछ खास नहीं है कि हमारे से होगा ही नहीं, तो हमने सोचा कि बनाते हैं। पर मैंने ना इस आइडिया को ऐसे ही ले लिया था हल्के में कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ में ना ज़्यादा ओवर घुसती नहीं हूँ, कि ये मेरी गलत आदत भी हो सकती है, पर मैं थोड़ा ऐसे रहती हूँ कि पहले मुझे पता चल जाए चीज़ें। तो वो घर गया, उसने वीडियो बनाई और वीडियो बना के डालनी शुरू कर दी। अब मेरे को ना तो इंस्टा की नॉलेज थी, मैं इंस्टा पे थी नहीं, मेरा इंस्टा स्नैपचैट सब उसी ने बनाया था, मेरे को नॉलेज कुछ भी नहीं थी। पर मेरे भाई को बहुत नॉलेज थी कि यूट्यूब पे क्या होता है, कौन कौन फेमस है, कौन कौन पैसे कमा रहे हैं। तो जब उसे पता चला कि इंस्टा पे वीडियोस बना रहे हो, तो उसने मुझे बोला कि दीदी यार यूट्यूब पे डालना शुरू कर, और तुम दोनों ना यूट्यूब पे करो। तो मैंने कहा क्या होगा उससे, कहता पैसे आएंगे। मैं गई फटाफट से उसके पास, मैंने कहा कि यूट्यूब पे डालना शुरू कर, इससे पैसे भी कमा सकते हैं। तो हमने यूट्यूब पे डालनी शुरू कर दी। तो ये जर्नी ऐसे बहुत नॉर्मल स्मूथ थी कि यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिया, वीडियोज बनानी शुरू कर दी। पर मेरी फैमिली ना ट्वेल्थ के बाद एकदम जो वो स्ट्रिक्ट थे और उनको ओपन अप होने में ना थोड़ा टाइम लगा। तो हम शूट करते थे, तो मेरी मम्मी और पापा का हमेशा से ये था कि तू लड़की है और हम ये नहीं चाहते कि तू हमें पैसा कमा के दे, पर हम ये चाहते हैं कि तेरा हाथ ना ऐसे रहे, ऐसे ना रहे कि किसी से मांग रही है, इंडिपेंडेंट रहे। उस टाइम पे क्या हुआ, जॉब की जब बात चल ही रही थी, मेरे पास एक वीडियो का कोलैबोरेशन आया। वीडियो मेकिंग ऐप थी कोई, जिसका नाम था वीगो। तो उसने मेरे को बोला कि आपको महीने के ना 12,000 रुपये मिलेंगे और आपको 20 वीडियोस डालनी है। वो मेरी पहली कमाई थी यूट्यूब की वजह से या इस फेम की वजह से। और अगर पहली कमाई में अपनी बताऊं तो वो 6th क्लास में थी, 20 रुपये, जो मैं मेहंदी लगाती थी पहले। तो मेहंदी लगाने जाती थी, उसके मुझे 20 रुपये मिले थे। फिर मैं एक पार्लर में गई थी जहाँ पे मेरे को 1500 से 1600 रुपये मिले थे मेहंदी लगाने के। वो मैंने इंटरेस्ट के लिए किया था, ऐसा नहीं कि मुझे ज़रूरत है, पर मेरे को इंटरेस्ट था तो मैं चली गई। पर एक होता है ना ऑफिशियल कमाई के, हाँ इसमें मैं अब घुस चुकी हूँ, इससे मुझे कुछ रिटर्न आया है। तो वो 12,000 रुपये थी। तो मेरे पापा ने मुझे बोला, तुझे जो करना है तू कर, तुझे जॉब नहीं करनी मत कर, तुझे यूट्यूब पे जाना है इतना कर लियो कि तुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। हमें बस ये चाहिए कि तू जो भी काम करे उसमें अपना 100% दे दे। तो फिर मैं बता के जाने लग गई शूट पे। तो हम डेली अप डाउन करते थे, गुड़गांव में कर रहे हैं कभी शूट, फिर बढ़ते चले गया टाइम, जो ड्यूरेशन था ना कि 4 दिन शूट चल रहे हैं, 5 दिन शूट चल रहे हैं। तो मेरे पापा ने ऐसा बोलना बंद कर दिया कि कोई बात नहीं, काम कर रही है, अच्छा कर रही है। और ये चीज़ उन्हें तब पता चली जब उनके व्हाट्सएप ग्रुप में ना मेरी एक वीडियो आई और वो बोलते कि अब मम्मी को कि ये अपनी मानसी है ना। तो मम्मी ने कहा हाँ है। तो और ना पापा ने ग्रुप में बोला ये मेरी बेटी है। और सब कह रहे आपकी बेटी तो बहुत अच्छा कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसे कर रही है। तब मेरे पापा को लगा कि कुछ तो कर रही है ये, अब इसको आगे कैसे लेके जाएगी। तो फिर मेरे पापा ना सोशल मीडिया को काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करने लग गए, हमारे चैनल को एनालाइज करने लग गए कि तू ऐसे रोल किया कर, ऐसे मत किया कर, सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे। तो तब तक मेरा खुद का यूट्यूब चैनल नहीं था, मैं सारा टाइम एलविश के चैनल पे दे रही थी और मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं था, तो मैंने बनाया भी नहीं। फिर मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट किया कि देख दूसरों को टाइम दे रही है, अच्छा कर रही है, सब कर रही है, पर तेरा खुद का क्या, तू खुद से भी तो कर सकती है ना काम।
कीर्ति जी, आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी तो अब स्टार्ट हो गई थी, पर इस डिसीजन से क्या आपके घर वाले खुश थे?
मुझे चैनल बनाना आता नहीं था कि बनेगा कैसे। तो मैं गई सबके पास और मैंने पूछा कि यार चैनल कैसे बनेगा। तो उन्होंने चैनल वैनल सब कुछ बनाया। तो 2016 में हमने ऐसे साथ में काम चालू किया था और 2019 में मैंने खुद का चैनल बनाया था। पर उसमें भी मैंने बहुत ढील छोड़ी हुई थी कि अपने चैनल पे काम किया, 6 महीने में एक वीडियो आ रही है, 3 महीने में एक वीडियो आ रही है, सालों साल वीडियो नहीं आ रही। उसके बाद सारी चीज़ें ऐसे चलती रहीं, चैलेंज वीडियोज आते रहे, व्लॉग्स आते रहे, जो हमारे शूट होते थे उसके BTS बनाती थी मैं। और हमारे कॉलेज में, काफ़ी कॉलेज में ऐसे होता था कि स्पीकर एज अ स्पीकर गेस्ट बुला रहे हैं, तो ऐसा मज़ा आ रहा था कि कुछ तो कर रहे हैं। पर कहीं पे ना ऐसा लग रहा था कि यार खुद का भी तो नाम नहीं हो रहा ना, और वो भी करना है। तो मैंने अपना चैनल बनाया, उस पर काम चालू किया, फिर मैं ढीली पड़ गई, फिर उसको चालू किया। 2019 के बाद 2021 में कोविड आया। तो कोविड में पापा की डेथ हो गई थी। तो अगर आप लोग मेरे दोस्तों से बात करोगे या किसी से भी बात करोगे तो उनको ना शुरू से पता है कि इसके मुंह पे ना हमेशा पापा पापा रहता था। अभी भी अगर मैंने अपनी कहानी बताई है तो उसमें पापा ही हैं। तो वो एकदम से चले गए और मैं अपने पापा की बहुत बहुत लाडली बच्ची थी। मतलब मैंने जो बोल दिया ना वो चीज़ होगी ही होगी। और ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल इश्यूज थे उसके वजह से उन्होंने मेरे को प्यार कम दिया हो या कोई चीज़ें छोड़ दी हूँ, सब कुछ बहुत किया था और मुझे प्यार भी बहुत था। अगर कोई भी चीज़ करनी हो ना तो मैं बोलती थी रुको मैं अपने पापा को बोल के आती हूँ, वो करवा देंगे। तो 2021 मई में पापा की डेथ हो गई थी कोविड की वजह से, सेकेंड वेव में। तो उसके बाद मेरे को ऐसा हो गया था कि मैं काम नहीं कर पाऊँगी, मेरे को चैनल छोड़ना पड़ेगा या मैं अब कैसे संभालूंगी, मेरे को नहीं करना है। व्लॉगिंग में क्या होता है, अगर आप खुद ही खुश नहीं हो तो आप कैमरा उठा के दूसरों को कैसे खुशी दिखा सकते हो, फेक लगता है वो चीज़। तो ऐसा था कि सबको खुश भी दिखाना है और सब कुछ करना है। और उस टाइम पे मेरे पास एक ब्रांड डील थी जो जिसकी पेमेंट मेरे पास आ चुकी थी और मुझे वो कंप्लीट करनी थी वीडियो। तो 1 महीने का मैंने गैप लिया, पर फिर उन ब्रांड ने ऑब्वियसली थोड़ा एडजस्ट कर लिया, पर उनकी पेमेंट है वो भी कितना रुकेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आप वीडियो दे दो। अब मेरे साथ प्लस पॉइंट ये था कि मैंने एक वीडियो का BTS रिकॉर्ड करके ऑलरेडी रखा हुआ था, आई थिंक शायद ट्यूशन टीचर की बेटी से प्यार से Part 3 कुछ था। तो मैंने वो वीडियो डाला BTS और उसमें ब्रांड इंटीग्रेशन ऐड किया और वो वीडियो लाइव कर दिया। लाइव करने से पहले मेरे दिमाग में था यार मैं कैसे करूँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैं फ़ोन करके बोल रही थी एल्विश को कि यार मेरे से नहीं होगा वीडियो, मतलब मेरे को नहीं करना। फिर मेरे दिमाग में एकदम से आया कि यार पापा को तो यही चाहिए था ना जब मैं इस लाइन में आ गई थी। स्टार्टिंग में उनको नहीं समझ आ रही थी, बट जब उन्हें समझ आई तो उन्होंने बोला था कि तेरे गाने कब आएंगे, तू TV पे कब दिखेगी, तेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही, तेरे सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं बढ़ रहे, यहाँ पे ऐसा कर ले, यहाँ पे ऐसा कर ले। तो मैंने कहा अगर मैंने छोड़ दिया तो पहली बात तो वो खुश नहीं होंगे, और दूसरी बात वो जो अपने पीछे मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के गए हैं, मेरी फैमिली, उसको कौन देखेगा। क्योंकि यार सब लोग ना आपको एक बार आके पूछेंगे, दो बार आके पूछेंगे, तीन बार, एक महीना, छः महीना, उसके बाद सब लोग पीछे हट जाते हैं। और मैंने उन लोगों को भी देखा है जिन्होंने मुझे बोला था कि तू टेंशन मत ले, हम खड़े हैं ना, हम तेरे पापा जैसे हैं। और लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जब आपके पास ना ऑप्शन नहीं होता स्ट्रांग बनने के अलावा, आप किसके आगे हाथ फैलाओगे, किसके आगे सहारा मांगोगे, आपकी फैमिली ही आपके पास रह जाती है। तो एक टाइम ऐसा आया कि मैंने 21 के बाद जॉब ज्वाइन कर ली, मतलब एक कंपनी मैंने ज्वाइन करी जहाँ पे मैं एज अ यूट्यूब कम्युनिटी मैनेजर हूँ। और वो जॉब इसलिए नहीं करी थी कि कुछ मैं फाइनेंशियली अपने घर वालों को संभाल नहीं पा रही थी, या फिर मेरे को स्विच करना था, या कुछ ऐसा अलग सा करना था। मेरी मम्मी को था ऐसा कि अभी पापा नहीं है तो घर कौन देखेगा और क्या चीज़ें हैं, एक होता ना सिक्योरिटी। तो मैंने सिर्फ मम्मी की खुशी के लिए अपने घर से बाहर निकल के जॉब ज्वाइन कर ली, और मम्मी को ना देखा भी नहीं जा रहा था क्योंकि जिस टाइम पे पापा गए उसी के 4 महीने बाद ऐसा मेरे रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ने लग गई और ब्रेकअप वगैरह ये सब चीज़ें आने लग गई। तो मुझे लगा सेम टाइम पे 2 चीज़ें हो रही हैं, मम्मी के पास भी अपना पेन है और वो मेरे से तो बहुत ही बड़ा है, तो वो मैं नहीं चाहती मैं उनके सामने रहूं। और वो भी मेरे को नहीं देख पाती थी और मेरे को लगता था उनका दुख ज़्यादा बड़ा है, तो एक दूसरे को फेस ही नहीं करते क्योंकि जितना मैं वो मुझे देखेंगी, माँ है, उनका दिल पिघल जाएगा और रो देंगी। मैंने कहा जितना ये मुझे देखेंगी उतना इमोशनल होती जाएंगी, तो मैंने जॉब ज्वाइन कर ली।
जो आप अभी सुन रहे हैं, अगर आपको पसंद आया हो और आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो फॉलो बटन और ठीक उसके बगल में बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पापा के गुजरने के बाद आपने एक जॉब शुरू की और एक नए सफर की शुरुआत हुई। क्या आप हमें इस जर्नी के अनुभव के बारे में कुछ बता सकती हैं?
ये जो कंपनी मैंने ज्वाइन करी थी इसने मुझे ब्रेकअप के बाद या फिर पापा के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प करी इन चीज़ों को ओवरकम करने में, क्योंकि मेरा वो नेचर ख़त्म हो चुका था कि मैं अपने दोस्तों को फ़ोन करके बोलूँ यार मेरे को ना ऐसा खाली खाली लग रहा है, मुझसे बात कर लो, यहाँ पापा की याद आ रही है, या फिर ये चीज़ बुरी लग रही है। मैं छोड़ चुकी थी ये सब चीज़ें क्योंकि मेरे को था जो इतना बुरा टाइम देख लिया उस टाइम पे अगर कोई नहीं है तो मैं आगे क्या ही एक्सपेक्ट करूँ किसी से, ना खुद ही करना है, खुद ही फैमिली के जो 4 लोग हैं वही सब हैं, इनके अलावा मेरे को किसी को देखना नहीं है। तो मेरा नेचर ऐसा हो चुका था, एकदम ऐसे बाउंड्रीज बना दी थी कि इसको तो कोई क्रॉस कर ही नहीं सकता और मैं खुद भी नहीं जाऊँगी इसके बाहर। तो इस कंपनी में जो मुझे दोस्त मिले, इन्होंने मुझे सिखाया कि तू दोबारा अपने दोस्तों पे भरोसा कर सकती है, यहाँ सबसे बात कर सकती है। तो उस चीज़ में मेरे को इतनी हेल्प मिली कि मैंने अपने दोस्तों से वापस से सबसे बात करनी चालू करी, और ऐसे नहीं कि यार मेरे को हेल्प चाहिए, मेरे को ऐसे चल छोड़ जो भी हुआ ना ख़त्म करते हैं उसको, आगे बढ़ते हैं। पर वो आगे बढ़ने में मेरा नेचर ऐसा बन गया कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और मुझे लगता है ये आगे चल के मुझे थोड़ा नुकसान भी दे सकता है कि किसी की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती साथ में, हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती साथ में रहने के लिए। पर मुझे लगता है लव लाइफ पे ये आपके बहुत डिपेंड करते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर है वो आपसे 100% एक्सपेक्ट करता है, और जो कि करना भी चाहिए। अगर मैं उसको वो चीज़ ना दे पाऊँ अब इतना सब कुछ होने के बाद, तो उसके साथ अनफेयर हो जाएगा। और मैं अब इतनी स्ट्रांग बन चुकी हूँ कि मुझे लगता है पहले मेरे को अपने करियर पर ध्यान देना है। हमारे पास एक बुक है जिसमें हमारे फाइनेंस का चैप्टर है, हमारी हेल्थ का चैप्टर है, हमारी फैमिली का चैप्टर है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें से एक चैप्टर है रिलेशनशिप। मुझे लगता है रिलेशनशिप के चैप्टर को मैं बाद में पढ़ूंगी, बाकी 9 पहले पढ़ूंगी, क्योंकि एग्जाम में 9 छोड़ के आना ज़्यादा बुरा हो जाएगा रेदर देन 1 छोड़ के आना। तो मेरे को लगता है उस चैप्टर को बाद में पढ़ेंगे, जब बाकी 9 चैप्टर इतने अच्छे हो जाएंगे, इतने अच्छे हो जाएंगे कि फिर मेरे पास टाइम होगा कि अब मैं ना इसको भी पढ़ लेती हूँ। अभी मेरे को लगता है मेरे पास ना तो टाइम है, ना ही मेरे पास वो एनर्जी बची है। कुछ लड़कियाँ मैंने ऐसी भी देखी हैं जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं कि खुद पर ध्यान देना भूल जाती हैं। मैं खुद भी ऐसी थी, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे छोड़ी हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, पर जब वो चीज़ हो गई ना, बिना किसी ग्रजेस के, बिना किसी उसके, साइड हो जाओ और खुद पे ध्यान देना चालू करो। फीलिंग्स बहुत मैटर करती हैं, अगर आप में फीलिंग्स नहीं है तो फिर तो आप पत्थर हो ना। इंसान हो तो फीलिंग्स होंगी, पर सब चीज़ों को ना बैलेंस करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे ओवर केयर कर रही हूँ तो उसका भी फ़ायदा नहीं है, और अगर कम केयर कर रही हूँ तो उसका भी फ़ायदा नहीं है। एक बैलेंस होता है फीलिंग्स में, करियर में, सब चीज़ों में। लड़कियाँ ना करियर को बहुत नीचे दबा देती हैं। फीलिंग्स के मामले में ऑब्वियसली लड़कियों को कोई बीट नहीं कर सकता है, वो यहाँ रहती हैं उनकी फीलिंग्स। पर करियर को जो लड़कियाँ नीचे दबा देती हैं ना, मैं उनको बोलूँगी कि करियर तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा, आगे चल के कुछ भी ऐसे मिस हैपनिंग होती है, मैं ये नहीं बोलूँगी सबके साथ हो, पर अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है, कोई भी मिस हैपनिंग होती है मायके की तरफ से या फिर ससुराल की तरफ से, तो वहाँ पे ना लड़की कंफ्यूज हो जाती है, यार मेरा घर कौन सा है, मैं कहाँ जाऊँ। तो आप इतने इंडिपेंडेंट हो जाओ कि आपके पास ना खुद का भी कुछ हो, कि अगर मेरा कोई नहीं है ना, मैं खुद के लिए हूँ, मेरे पास खुद का इतना कुछ है कि मैं अकेले खुद संभाल लूँगी सब कुछ। अगर किसी के पीछे ऐसे डिपेंडेंट रहोगे ना, खुद को भी खोदोगे और जो बाकी सारे 9 चैप्टर्स हैं उनको भी खोदोगे। तो मैंने यूट्यूब पे रेगुलर हुई, मैंने स्नैपचैट पे रेगुलर अपने आप को किया, इंस्टा पे किया, फेसबुक पे किया, सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे उन पे मैंने वीडियोस बनानी चालू करी, वापस से ऐसे पेस पकड़ा और वो ग्रो भी हुआ। मैंने जब 1.5 साल के लिए अपना यूट्यूब चैनल और कंसिस्टेंसी छोड़ दी थी तो उस पर शायद 2,03,000 कुछ सब्सक्राइबर्स थे, और जब मनीष की शादी के बाद मैं कंसिस्टेंट हुई तो उस 4-5 महीने के गैप में मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके थे और अभी 6 लाख होने वाले हैं। इंस्टा पे मेरे फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे, बट एक एकदम से बूम मिला जो मुझे लगता है कि हर किसी को मिला, उससे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, फॉलोअर्स बढ़ गए। और स्नैपचैट पे मैं एक्टिव हुई 1.5 महीने से तो स्नैपचैट पे मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। जब मैं ये सब यूट्यूब, इंस्टा, ये सब चीज़ें कर रही थी, उसी के बीच में एक ऐसी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी आई मेरे पे जिसमें हेट कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे। हेट का मैग्नीट्यूड इतना था जो मैंने कभी लाइफ में देखा ही नहीं था, क्योंकि आज तक मैं जितने भी लोगों से मिलती थी मैं हमेशा ही बोलती थी कि यार मेरे पास तो हेट कमेंट्स आते ही नहीं है, मेरे को तो कोई कुछ ऐसा बोलता ही नहीं है, हमेशा अच्छा ही बोलते हैं, जो कि सच भी है, कभी किसी ने बुरा नहीं बोला। पर होता है ना, कभी किसी दूसरे की ऑडियंस आ जाती है हमारे पास और वो बिना रिसर्च करे या गुस्से के आती है कि इसने ऐसा बोला, क्यों बोला, बिना समझे। तो वो हेट कमेंट्स बहुत बढ़ गए थे, मुझे उससे अफेक्ट होना एकदम बंद हो गया, क्योंकि मैं जीरो लेवल पे नहीं जाना क्योंकि मैं अपने जीरो लेवल पे नहीं जाना चाहती थी, जहाँ पे मुझे एक कमेंट्स पढ़ के ऐसे रोना आ जाता था। तो मेरे को लगा यार इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं बैठ के देख नहीं सकती और सबको मैं रिप्लाई नहीं कर सकती, सबको मैं ब्लॉक नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने एक बार ब्लॉक करने का ट्राई किया था सारे कमेंट्स तो इंस्टाग्राम ने मुझे 2 बार बोल दिया था कि बस करो और आप नहीं कर सकते। मैंने कहा यार इसको इतना तो पता होना चाहिए कितने गलत कमेंट आ रहे हैं, तो क्यों रोक रहे हो मुझे। तो मैंने कहा इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है, कमेंट्स के ना नोटिफिकेशन ऑफ कर देती हूँ, कमेंट डिलीट भी नहीं करती, ब्लॉक भी नहीं करूँगी किसी को। ऐसा कोई यूट्यूबर मैंने नहीं देखा अपने आसपास जिसने इंस्टा के नोटिफिकेशन ऑन करे हुए हैं, स्नैपचैट के करे हुए हैं, व्हाट्सएप के करे हुए हैं, सबके करे हुए थे मैंने। पर इस कॉन्ट्रोवर्सी के बाद मैंने क्या किया, सब कुछ ऑफ कर दिया कि मुझे ना तो नोटिफिकेशन देखने, ना ही मुझे वो कमेंट्स पढ़ने। कुछ वर्ड्स थे जो मैंने ब्लॉक कर दिए क्योंकि नेगेटिविटी में मुझे घुसना नहीं था। उससे जो मेरे को ऐसे होता है ना, एक चैन की सांस मिली है। और वहीं दूसरी साइड जो पॉजिटिव ऑडियंस थी, मैंने उन पे ध्यान देना चालू कर दिया, क्योंकि मेरे कुछ बोलने से पहले ही ना वो खड़े हो जाते मेरे आगे। मैं अपने फैन पेजेस को फैन पेजेस बोलती नहीं हूँ, वो मेरे कुछ फैन पेजेस हैं जो मेरे दोस्त बन चुके हैं, उनसे मेरी डेली बात होती है आराम से कि और दीदी कैसे हो, मैं भी बताती हूँ बढ़िया है, तो उनको मैं फैन पेजेस मानती नहीं हूँ। वो मेरे आगे पहले ही खड़े हो जाते हैं दूसरों को रिप्लाई देने के लिए कि आपने बोला कैसे दीदी को। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि यहाँ पे अगर मैं आई हूँ और इतना मैं बोल पा रही हूँ तो वो आपकी वजह से ही है। सबको मौका नहीं मिलता अपनी जर्नी शेयर करने का, सो थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक लाने के लिए और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए कि मैं आप लोगों को चीज़ें बता पाऊँ। ये चीज़ किसी को पता नहीं है कि मैं जब इंडस्ट्री में आई थी इन सब चीज़ों के लिए, यूट्यूब इंस्टा ये सब, तब जोश टॉक्स जो है मेरे को ऐसे सुनने में आता था कि है कुछ है कुछ, और क्या पता मुझे कभी बुलाएंगे या क्या पता मेरे को ऐसे बोलेंगे, ऐसा पता नहीं था कि सही में मैं खड़ी हो जाऊंगी यहाँ पे, और आज मैं इधर खड़ी हूँ तो आप लोगों की वजह से हूँ। एंड थैंक यू सो मच जोश टॉक्स कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और अपनी जर्नी शेयर करने का मौका दिया, थैंक यू।
तो दोस्तों ये थी कीर्ति मेहरा, जिन्होंने अपने हर एक फेलियर को अपॉर्चुनिटी के नजरों से देखा और कंसिस्टेंसी से हार्डवर्क के साथ उस अपॉर्चुनिटी को सफलता में बदल दी। आज के पॉडकास्ट में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने जोश को बनाए रखने के लिए फॉलो बटन और बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको आज का एपिसोड सुनकर अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों और अपने परिवार के लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें शायद अभी जोश की जरूरत हो। हम उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड ने आपको एक जोश भरा कदम उठाने के लिए प्रेरित किया होगा। मैं सिद्धांत नाग आपसे फिर मिलूंगा द जोश टॉक्स पॉडकास्ट के अगले एपिसोड पर।